मुख्तसर आपकी क्लास है और रिवाइज हुआ 1967 इसी तारीख। हम अभी जो स्टडी करते हैं ये स्टडी श्री कृष्णपुरी के लिए करते हैं, स्टडी करने वाला कौन है? ब्रह्मा ने बोला हम बच्चे जो स्टडी करते हैं वो श्री कृष्णपुरी के लिए करते हैं। श्री कृष्णपुरी कहाँ होगी? सतयुग में होगी। या संगम युग में होगी। भक्ति मार्ग में सतयुग के कृष्ण का तो कोई गायन नहीं है, सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ही नहीं है। सारी बात संगम युग की है। संगम युग में जब शिव बाप आते हैं, निराकार आत्माओं का निराकार बाप आते हैं, तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों का जो बाप है शिव, की आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदु का नाम शिव है, उनको शरीर होता ही नहीं। ये वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी बाप तो मनुष्य की सृष्टि में आते हैं, तो वो बापों का बाप है। तो मनुष्य की सृष्टि में जो भी ग्रेट धर्म पिताएं हैं उनका भी बाप मनुष्य शक्ति का भी प्रजापिता, जिसे कहें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, माना बाबा। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है, परंतु ग्रैंड फादर का भी कोई बाप है जिसका कोई बाप नहीं, और वो है सारी मनुष्य आत्माओं का बाप। ज्योति बिंदु शिव वही राजयोग की स्टडी कराने वाला है। राजयोग से राजा सिर्फ वो ही बना सकता है जो सदा स्वतंत्र हो, सदा स्वतंत्र रहने वाला सदा स्वतंत्र ही बनाएगा। राजा होता है अपने राज्य में स्वतंत्र होता है, सबके ऊपर शासन करता है, उसके ऊपर कोई शासन नहीं करता। शासन करने की कला सिवाय आत्माओं के बाप शिव के कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि जितने भी मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि में सब देहवान वाली होती है, देहवान वाली बनती है। बल पहले पहले जिस सृष्टि में आती है तो सात्विक होती है, आत्माभिमानी होती है, परंतु सबको संग का रंग लगता है और देहवाणी बन पड़ती है। संग का रंग लगता ही है शरीर के द्वारा, शरीर पांच तत्वों का पुतला, पांच तत्व विनाशी हैं, आत्मा अविनाशी है। पांच तत्वों के प्रभाव में आते हैं, दूसरा प्रभावित होने वाले हैं, यहाँ तक कि मनुष्य शक्ति का जो बाप है सारी मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का बाप वो भी पांच तत्वों से प्रभावित होता है और नीचे गिरता है, परंतु पापी नीच सृष्टि में अंत में जब सुप्रीम कुल बाप आत्माओं का बाप आते हैं तो अपने बड़े बच्चे को बाप का वर्षा जो मिलना चाहिए तो वर्षा निराकारी ही वर्षा देती है, क्योंकि आत्मा निराकारी, आत्माओं का बाप भी निराकारी। और निराकारी आत्माओं का बाप शिव सदा शिव कहा जाता है,
जो सदा ही निराकारी है, भले षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है, पांच तत्वों के पुतले में प्रवेश करता है ज्ञान देने के लिए, परंतु वो देह के पांच तत्वों के प्रभाव में नहीं आता। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या प्राणी मात्र की आत्माएं हैं इस सृष्टि पर पांच तत्वों के संग के रंग में प्रभाव में आती है और नीचे गिरती है, तो वो सुप्रीम सोल बाप जो कभी नीचे नहीं गिरता, पतित नहीं बनता, सदा शिव कहा जाता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, देह के बंधन में ही नहीं आता। त्रिकालदर्शी होने से वो तीनों काल के ज्ञान का वर्षा देता है और वो वर्षा आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं इस मनुष्य सृष्टि में भी उनमें से जो बड़ा भाई है आत्मिक रूप में उस बड़े भाई को वर्षा देता है। यही परंपरा सारी दुनिया में चलती रहती है, खास भारत में और आम सारी दुनिया में। हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, बड़े बच्चे को वर्षा दिया। और सामान्य रूप से भी देखा जाए तो हर परिवार का बाप अपने बड़े बच्चे को वर्षा देता है पहले पहले, और बच्चा बड़ा लंबे समय की प्योरिटी के पावर से जन्म लेता है। जो प्योरिटी की पावर बाप से आती है माता के द्वारा, इसलिए उसमें शक्ति ज्यादा होती है। पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, सत्य की जानकारी, तीनों काल के सत्य की जानकारी, सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सच्चाई क्या है उसकी जानकारी एक ही सुप्रीम सोल के पास रहती है, क्योंकि वो देह के प्रभाव में नहीं आता, पांच तत्वों के प्रभाव में नहीं आता। इसलिए देह का जन्म भी नहीं लेता, सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। परंतु जो ज्ञान का वर्षा देता है मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में जो बड़ा भाई है, वो उस ज्ञान के वर्षे को अपने जीवन में संगम युग में सबसे जास्ती यूटिलाइज करता है, उपयोग में लाता है। जैसे दुनिया में भी कोई बाप का बच्चा अपने बाप की दी हुई प्रॉपर्टी का अच्छे से सदुपयोग करता है, तो आत्माओं का बाप जो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है उस ज्ञान के वर्षे का वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है वो अच्छे से यूटिलाइज करता है, जीवन में धारण करता है। क्योंकि बाप आकर के जो ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं उस ब्राह्मण सृष्टि में वो पहला ब्राह्मण है, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जिसे देव देव महादेव कहा जाता है। तीन हैं बड़े से बड़े देवता, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उनमें भी बड़ा देव महादेव। तो इस आधार पर ब्राह्मण से महादेव बना, क्योंकि ब्राह्मणत्व का जो धंधा है वो जैसे बाप चाहते हैं वैसे ही जीवन में अपनाता है। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। आत्माओं के बाप का क्या धंधा है? है इस सृष्टि में आता है तो क्या धंधा करता है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो बताया कि हम मनुष्य आत्मा रूपी जो ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करते हैं वो कहाँ के लिए करते हैं? सतयुग के लिए करते हैं, त्रेता के लिए करते हैं, द्वापर के लिए करते हैं, या कलयुग के लिए करते हैं, या इन युगों से भी कोई ऊंचा युग है? जहाँ सबसे ऊंची प्राप्ति होती है डायरेक्ट आत्माओं के बाप से, जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। तो बताया कि हम बच्चे संगम के लिए स्टडी करते हैं, खास ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी संगम में डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने के लिए करते हैं, या अगले युगों में प्राप्ति करने के लिए करते हैं? संगम युग में डायरेक्ट बाप से जो प्राप्ति होगी, जो ऊंचे से ऊंचा बाप है तो ऊंचे से ऊंचा वर्षा देगा, कहाँ देगा? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं है, आता कहाँ है? संगम में आता है, तो संगम में ही ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराएगा ना, कहाँ कराएगा? संगम में ही डायरेक्ट बच्चों को नंबरवार ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराता है। और जो ऊंचे से ऊंची प्राप्ति है वो है जिसकी घोषणा संख्या 66 में शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से की थी कि आने वाले 10 वर्षों में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होगा, विघटन होगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। अर्थात नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुगी लक्ष्मी नारायण, या संगम युग में कोई लक्ष्मी नारायण उसी जन्म में बनते हैं जिस जन्म में पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करते हैं, है संगम में प्राप्ति करते हैं। तो वो है ऊंचे से ऊंचा वर्षा। क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। लेकिन नारायण पहले बच्चा होगा या बड़ा ही पैदा हो जाएगा? है जो बच्चा होगा वो ही संगमी की कृष्ण है, वो ही असली श्री कृष्णपुरी है जिसका शास्त्रों में यादगार चला आता है कृष्ण के रूप में। चित्र भी हम बच्चों ने देखे होंगे। जगत पिता सारी मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा पिता है। जो किसी साकार मनुष्य तन में आकर उस साकार मनुष्य तनधारी आत्मा को वर्षा देता है नर से नारायण बनने का। नारायण तो बाद में बनेगा, पहले बच्चा बुद्धि होगा या शुरुआत में ही पूरा ज्ञान धारण कर लेगा? है पहले बच्चा बुद्धि हो। तो जो बच्चा बुद्धि है आत्माओं के बीच में पहला बच्चा, पहली मनुष्य आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि की, वो ही आत्मा है जिसका गायन भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के नाम से किया जाता है। जो बाप कहते हैं ये बड़ी से बड़ी भूल हो गई, क्या कि बाप की जगह बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया। राजयोग की पढ़ाई किसने पढ़ाई? श्री कृष्ण बच्चे ने पढ़ाई या श्री कृष्ण बच्चे के बाप ने पढ़ाई? बाप ने पढ़ाई, लेकिन भक्त उस बाप तक नहीं पहुंच पाते। जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, जिससे ऊंची कोई आत्मा होती ही नहीं, दुखदाम में तो ऊंची की बात ही नहीं, सुखदाम में देवताएं होते हैं, उन देवताओं में ऊंचे से ऊंचा देवता महादेव और देवताएं जो पहले किसी जन्म में मनुष्य थे, नर थे, उन नर को नारायण बनाने की पढ़ाई देवता ने पढ़ाई या भगवान ने पढ़ाई? भगवान ने पढ़ाई। तो जो निराकार भगवान है साकार मनुष्य तन में इस सृष्टि पर आता है और आप समान भगवान भगवती बनाता है। तो जिसको भगवान बनाया वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या बनाया? भगवान, भाग्यवान। जो शास्त्रों में दिखाया जाता है खासकर गीता शास्त्र में कि भगवान ने आकर अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन नाम ही पड़ता है अर्जन करने वाले का, क्या अर्जन किया? सदभाग्य का अर्जन किया, उससे अच्छा भाग्य और दुनिया में किसी का बनता ही नहीं। और कब बनता है वो भाग्य? है ऊंचे से ऊंचा भाग्य है, सदभाग्य है, कौन से युग में बनता है? है संगम में बनता है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं उन्होंने भी मनाया, और जो अभी अपन को एडवांस पार्टी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं उन्होंने भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 मनाया। लेकिन जाना किसी ने नहीं कि हम कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए रहे। मनुष्य शक्ति के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए रहे हैं या आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए रहे हैं? 76 में किसी ने जाना? नहीं जाना, क्योंकि प्रत्यक्षता तभी होती है श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण भगवान से पढ़ाई पढ़कर पहले भगवान बाप का बच्चा बनता है। बच्चे को अपनी अकल होती है, है कि माँ बाप जैसे चलाते हैं वैसे चलता है, है माँ बाप जैसे चलाते हैं वैसे चलता है। तो जो नरसे नारायण बनने वाला बच्चा है, 76 में जिसका जन्म है, ईश्वरीय महावाक्यों के अनुसार वो बच्चा पहले पहले ज्ञान में और ज्ञान की जो प्रारब्ध है, ज्ञान से पढ़ाई से जो पद मिलता है, उस पद की प्राप्ति के लिए पढ़ाई तो पढ़ने में टाइम लगता है या हथेली पे आम जमे आता है? टाइम लगता है। तो ये जो राजयोग की पढ़ाई है गीता ज्ञान की, वो गीता हमारी कौन सी हुई? ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों की गीता हुई यज्ञ के आदि में ही। शिव बाप ने आकर के जिस तन में प्रवेश किया पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो गीता माता हुई। जो बाप ने बोला है मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, तो वो 1936-37 में जिस तन में ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए शिव बाप निराकार ने प्रवेश किया, वो परम ब्रह्म के नाम से शास्त्रों में गाया गया, परे ते परे ब्रह्म, जिससे ऊपर कोई ब्रह्मा नामधारी नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा है गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? परम ब्रह्म, जिसको पहले ब्रह्मा नामधारी बनाया, तो वो ही है गीता माता। परंतु नाम तो दिया परम ब्रह्म, लेकिन तन मेल का था या फीमेल का था? है फीमेल का तन था, मेल का तन था। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो तन मेल का था या फीमेल का था, तो प्रवेश किया तो नाम रख दिया ब्रह्मा। दादा लेखराज का भी नाम क्या रखा? ब्रह्मा। ऐसे ही ये दादा लेखराज का नाम जो ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ वो तो सन 47 से हुआ, जब से मुरली निकलती चली आ रही है। पता कैसे चलता है? कहने में भगवान बाप बोलता है, है? जब ज्ञान सुनाते हैं ऐसा ज्ञान जैसा ज्ञान दुनिया में कोई ने नहीं सुनाया, ऐसा तुरीय ज्ञान सुनाते हैं, तब समझा जाता है ये ज्ञान सिवाय भगवान बाप के और कोई सुना ही नहीं सकता। लेकिन वो दादा लेखराज तो जो ज्ञान सुनाया, जिन ब्राह्मणों के बीच में सुनाया, वो ब्राह्मणों का संगठन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे पहले भी कोई ब्राह्मणों का संगठन था? है? था या नहीं? क्या नाम था? ओम मंडली नाम का संगठन था ब्राह्मणों का। जिस ब्राह्मणों के संगठन में आ ओ मा ओम तीनों आत्माओं ने इकट्ठा काम किया, आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश, मुरली में भी यही बोला है। मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। तो सन 36-37 में शिव बाप ने पहले पहले जब प्रवेश किया तो उस समय तीनों मूर्तियां उस समय इकट्ठी थी। कौन कौन? ब्रह्मा भी था और विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा जो प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण भी करती है और दूसरों को धारण भी कराती है। माना दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का सुनना सुनाना हुआ, प्रैक्टिकल में धारण तो नहीं किया है? प्रैक्टिकल में धारण करके ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा नारायण बन गई क्या? नहीं बन गई। और उनकी जो सहयोगिनी शक्ति ओम राधे थी वो लक्ष्मी बन गई क्या? नहीं बन गई। दोनों शरीर छोड़ गए, किस्सा खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाने लगे, लेकिन दुनिया में गायन और पूजन तो साकार शरीरधारियों के द्वारा पाठ बजाने का होता है। उनकी मूर्तियां बनती हैं, उनके चित्र बनते हैं, उन्हीं के मंदिर बनाए जाते। तो यज्ञ के आदि में जो तीन मूर्तियां थी, आदि में सो अंत में भी प्रत्यक्ष होती। अंत का मतलब है जब आत्माओं का बाप शिव बाप अपने बड़े बच्चे के साथ इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। क्या? तब लेता है जन्म जब भगवान ईश्वर बाप राजयोग की पढ़ाई पूरी पढ़ाई देता है। जो बात मुरली में अक्सर आती है, आजकल की मुरलियों में भी, रिवाइज मुरलियों में भी वो बात आती है, ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा भी शरीर छोड़ने से पहले वो बात बताई कि मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम बच्चों को दे दिया। दादा लेखराज के द्वारा बेसिक ज्ञान मिला, और क्योंकि माँ का पार्ट था, माँ घर में बेसिक ज्ञान देती है या हायर कक्षा का ज्ञान देती है, हैं? बच्चों वाला ज्ञान देती है। हायर कक्षा का ज्ञान देने के लिए सुप्रीम सोल बाप को खुद सुप्रीम टीचर बनकर की सृष्टि पर आता है। तो ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद 76 से जिस मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई नारायण के रूप में, उसी नारायण वाली आत्मा के द्वारा शिव बाप सुप्रीम टीचर बनकर के गीता ज्ञान का क्लेरिफिकेशन देता है, अर्थात व्याख्या देता है विस्तार में। व्याख्या की क्या जरूरत? कोई बात को सुन लिया जाए, दूसरों को सुना दिया जाए, इससे वो बात समझ में आ जाती है क्या? है? सुनने सुनाने से समझ में नहीं आती, उस बात को गहराई से समझना पड़े और फिर समझाना पड़े। तो सुनना सुनाना ये बच्चों का काम होता है और समझना समझाना बड़ों का काम होता है या छोटे बच्चों का काम होता है। तो मनुष्य सृष्टि का सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता है, दादा लेखराज की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, वो पहला देवता है सतयुग का। देवताएं बुद्धू होते हैं या ज्ञानी होते हैं? तो बुद्धू में अव्वल नंबर का वो बुद्धू मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, क्योंकि सतयुग में जितने भी देवताएं हुए 2 करोड़, राजा हो चाहे प्रजा वर्ग के हो, वो सब ज्ञान की बातों को नहीं जानते। सतयुग जब आदि होता है तो उससे पहले एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे में वो मनुष्य आत्माएं सब कुछ भूल जाती है। जैसे आज की दुनिया में मनुष्य का बड़ा एक्सीडेंट कोई हो जाए, सर कुचल जाता है, धड़ कुचल जाता है और खुदा न खास्ता जीवित रह गया, तो वो अपनी पूर्व की पूरी इस जन्म की बातों को भूल जाता है। ऐसे ही ये दुनिया में जो हादसे होते रहते हैं एक्सीडेंटल, वो तो छोटे मोटे हादसे हैं, लेकिन सतयुग शुरू होने से पहले एक्यूरेट, दुनिया में जो हादसा हुआ था मनुष्य सृष्टि में, वो ऐसा हादसा हुआ था कि बड़े से बड़ा हादसा, जिसे कहा जाता है महामृत्यु। साधारण मृत्यु तो होती रहती है चारों युगों में, लेकिन महामृत्यु होती है कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया के प्राणी मात्र की आत्माओं को अपना शरीर छोड़ देना पड़ता है, उसको कहते हैं महामृत्यु, महाविनाश। जिससे बड़ा महाविनाश कोई दुनिया में होता ही नहीं। तो इतना बड़ा जो एक्सीडेंट होता है उसमें सभी मनुष्य आत्माएं अपने पूर्व जन्म की बातों को, पूर्व कल्प की बातों को भूल जाती है, बुद्धू बन जाती है। पूर्व कल्प में विनाश होने से पहले आत्माओं के बाप ईश्वर ने राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी। जिस राजयोग की पढ़ाई से आत्माएं जन्म जन्मांतर, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, या तो राज परिवार में जन्म लेकर के कुछ न कुछ राज सत्ता ले लेती है, तो वो तीन प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो अव्वल नंबर वो आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप नारायण बनता है, नर से डायरेक्ट नारायण, उस नारायण का अर्थ ही है नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में ही रहता है, ज्ञान जल से कभी बाहर आता ही नहीं। जब से ईश्वर बाप का ज्ञान मिलता है तब से लेकर के और जीवन पर्यंत तक ज्ञान के धंधे में ही बुद्धि रहती है, ज्ञान के धंधे से बाहर दुनियावी धंधों में बुद्धि नहीं जाती। इसलिए जो पूरा समय अपना लगाएगा ईश्वरीय ज्ञान में, क्योंकि आज की दुनिया में समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो जीवन का सारा समय जो ईश्वरीय ज्ञान में लगाएगा, ज्ञान लेने, ज्ञान देने, ज्ञान समझने, ज्ञान समझाने में लगाएगा, उसको बाप का असली बच्चा कहा जाता है। जैसे बाप अविनाशी है आत्मिक रूप में, क्या उसके ज्ञान का कभी अभाव होता ही नहीं, कभी अज्ञानी बनता ही नहीं, ऐसे ही उस ज्ञान के भंडार, अफूट भंडारी शिव बाप का जो बड़ा आत्मा रूपी बच्चा है मनुष्य सृष्टि में, वो ज्ञान धारण करके संपूर्ण योगी बनता है। योगी माने योग लगाने वाला। किसके साथ योग लगाता है? है जो ऊंचते ऊंच आत्मा है, सुप्रीम गॉडफादर जिसको कहा जाता है उसके साथ योग लगाता है। किस आधार पर? सुप्रीम गॉडफादर ने त्रिकालदर्शी होने के नाते जो ज्ञान दिया उससे ज्ञान के आधार पर, उससे ज्ञान की थ्योरी के स्टडी के आधार पर, वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाता है। अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है जिसके लिए बोला गया पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, वो ही पहला ब्राह्मण बनता है, वो ही पहला देवता बनता है, बड़े से बड़ा महादेव कहा जाता है। तो उस थ्योरी के आधार पर ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के साथ जो प्रैक्टिकल कर्म करता है वो योगी कहा जाता है। आत्माओं के बाप को योगी कहें या ज्ञानी कहें? अगर कहें योगी तो सवाल पैदा होता है किसके साथ योग लगाता है? अपने से नीचे के साथ, अपने से ज्यादा शक्तिशाली के साथ योग लगाएगा या नीचे के साथ लगाएगा? नीचे के साथ ही योग लगाया जाता है, तो वो तो योगी नहीं है। हाँ, योग की प्रक्रिया सिखाने वाला है, उसे योगी होने की क्या दरकार है? योग की सिद्धि से संसार की सब प्रकार की सिद्धियां मिलती है। और जो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप है, वो तो इस संसार में 5000 साल रहता है, है? रहता ही नहीं, तो उसे योग की सिद्धियों की दरकार है? दरकार ही नहीं, वो तो बड़े ते बड़ा जिसे कहते हैं भारतीय परंपरा में सन्यासी, संपूर्ण त्यागी, न्यासी माने त्यागी, बड़े ते बड़ा त्यागी है, इतना बड़ा त्यागी है कि इस संसार का कोई सुख लेने की आशा नहीं करता, क्योंकि सुख देह के द्वारा लिया जाता है, देह की इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है, या बिना देह के सुख लिया जाता है? देह के द्वारा सुख लिया जाता है, और उसको अपनी देह है ही नहीं, इसलिए देह की प्राप्ति की उसे दरकार ही नहीं, वो तो सदा शांत रहता है, सदा शांति धाम का वासी है। इस अशांत दुनिया में भी कलयुग के अंत में आता है तो भी जिस पतित मनुष्य तन में प्रवेश करता है वहां भी शांत आत्मा रहती है, वो सुप्रीम सोल कभी अशांत होता ही नहीं है। तो उसे तो योगी बनने की दरकार ही नहीं। हाँ, जिन बच्चों को राजयोग सिखाता है और राजयोगी बनने के लिए ज्ञान देता है, तरीका बताता है, विधि विधान बताता है, उस विधि विधान का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई गीता। तो गीता कौन हुई? गीता माता कौन हुई? किसे कहें गीता माता? माता स्त्री या पुरुष? स्त्री। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है वो पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आराम से, उसे कहा जाता है पुरुष आत्मा। तो परम पुरुष है या नंबरवार पुरुष है? परम पुरुष है। उस परम पुरुष को सृष्टि रचने के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे दुनिया में भी जो भी पिताएं होते हैं उन्हें अपने पारिवारिक सृष्टि रचने के लिए कौन चाहिए? माता चाहिए। ऐसे ही ये सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर किस लिए आता है? नई सृष्टि रचने के लिए उसे माता चाहिए। तो वो माता दुनिया की सबसे पावरफुल माता होनी चाहिए या नंबरवार कमजोर माता होनी चाहिए? पावरफुल माता। तो वो तो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिकालदर्शी अपने शांति धाम में बैठे बैठाए भी जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, बीज में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा को वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जानता है, और जब इस सृष्टि पर आता है तो उसी में प्रवेश करके उसको मुकर्रर रथधारी बनाता है। क्या मुकर्रर माने? आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। टेम्परेरी रथ है दूसरे ब्रह्मा की रथ, क्योंकि ब्रह्मा नामधारी और भी अनेक हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। तो ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, लेकिन जो बड़े की बड़ी माँ है उसमें बड़े से बड़ा बाप, जिससे बड़ा बाप दुनिया में कोई होता ही नहीं है, वो बाप उसमें प्रवेश करके अपनी माता माने स्त्री बनाता है। और वही संसार का जो तन है जिसको सुप्रीम बाप मुकर्रर तन के रूप में धारण करता है, वो तन प्रकृति का पुतला है, जड़ तत्व है या चैतन्य है? चैतन्य है। जड़ शरीर भगवान बाप आकर के तन लेता है कि आत्मा लेता है? तन को आधीन करता है या आत्मा को आधीन करता है? है तन को आधीन करता है। दुनिया में भी जितने भी बाप होते हैं वो अपनी परिवार की सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए उन्हें? तन चाहिए। वो पहली रचना है हरेक बाप की, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का जो परम पिता है वो भी सृष्टि पर आकर के पहली रचना रचता है परम ब्रह्म, उसके द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचता है। जिस ब्राह्मण सृष्टि का नाम आदि में क्या था? ओम मंडली। तो उस ओम मंडली में तीन मूर्तियां तो थी शिव बाप के साथ, लेकिन उनमें ऐसी मुख्य मूर्ति कौन सी थी जिसमें तीनों मूर्तियां समा जाएं? है तीन मूर्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो सृष्टि के अंत में अब बिना सामने खड़ा है, एटमिक एनर्जी बन गई, विनाश तो होना लाजमी है। तो उस समय वो मूर्तियां इस संसार में होती हैं कि नहीं? अंत में आदि में होती हैं तो अंत में भी होती है, आदि सो अंत। जिन मूर्तियों की यादगार आज भी भारत में तीन कपड़ों का मेल झंडा बनाया जाता है, देखा तिरंगा झंडा तीन रंग वाला, और नीचे का हरा कपड़ा जिसकी आत्मा स्वर्ग में ही अपने को अनुभव करती है कि मैं स्वर्ग में जाकर के पहला प्रिंस बनूंगा। है ऐसी बुद्धि में रहते हैं? किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सतयुग में जो स्वर्ग होगा उससे भी ज्यादा ऊंची कोटि का स्वर्ग कोई और भी है, वो है संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग, जहां सुप्रीम सोल बाप शिव डायरेक्ट इस सृष्टि पर आकर के स्वर्ग रचने का तरीका बताते हैं गीता ज्ञान के द्वारा। उस ज्ञान को जो बड़ा बच्चा धारण करता है उसको कहा जाता है त्रिनेत्री महादेव। कौन सा देवता है जिसको तीन नेत्र दिखाए जाते हैं? शंकर। दो नेत्र तो साधारण है, पड़े हुए नेत्र बेड़े बेड़े, लेकिन तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाया जाता है। क्या खड़ा का मतलब क्या है? वो नेत्र पुरुषार्थ में खड़ा ही हुआ है, दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते गिर नहीं जाती है, वो आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा बुद्धि से खड़ी रहती है या गिर जाती है? खड़ी रहती है। किस आधार पर? बाबा ने कहा मुरली ही तुम्हारी लाठी है, ज्ञान मुरली। तो ज्ञान की मुरली की जो लाठी है उस लाठी को वो छोड़ने वाला नहीं, वो उसकी लाठी भी अजीब है। कौन सी लाठी है? है त्रिशूल, कौन सी लाठी? त्रिशूल। शूल माने कांटा, बाण, बाण कांटा होता है ना, तो ब्रह्मा का ज्ञान बाण, विष्णु का ज्ञान बाण, शंकर का ज्ञान बाण, तीनों प्रकार के ज्ञान बाण अलग अलग प्रकार के हैं कि एक ही जैसे हैं? ब्रह्मा का ज्ञान बाण स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करता है, कब? जब वो ब्रह्मा क्या बनता है? विष्णु। तो ब्रह्मा नामधारियों में एक आत्मा ऐसी भी है जो जन्म जन्मांतर विष्णु के रूप में रहती है। नो विश एट ऑल, विष्णु क्या, कौन सी आत्मा है? हाँ, वो आत्मा जो पार्वती कही जाती है, संपन्न स्टेज धारण करने पर वो योगिनी योग मूर्त पार्वती संपन्न बनने पर क्या बन जाती है? नारायणी बन जाती है, जिसे वैष्णवी कहा जाता है। उसमें क्या खासियत है? उसके ज्ञान बाण में खासियत क्या है? जो ब्रह्मा के रूप में ज्ञान था वो ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने तक सीमित था, यज्ञ के आदि में भी, जिस परम ब्रह्म में शिव ने प्रवेश कर उसे अपनी माता बनाया, उसके द्वारा सुनाया, सुना करके ज्ञान का बीजारोपण किया, किसके द्वारा सुनाया? तीन मूर्तियों में से किसको चुना? वो दादा लेखराज को जो साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों का मर्म किस मूर्ति के द्वारा सुनाया? है? है? शंकर मूर्ति के द्वारा। शंकर उसे कहा जाता है जिसमें शंकरण हो, मिक्सरिटी हो जाए। संग माने शिव, का माना जो संसार में कृष्ण के रूप में मान्यता प्राप्त है, भगवान के रूप में। सारी दुनिया में यही विख्यात हो गया कि गीता ज्ञान का दाता कौन है? कृष्ण। तो जिसको गीता ज्ञान का दाता मान लिया वो कृष्ण झूठा साबित होता है या सच्चा साबित होता है? है? झूठा साबित होता है, क्योंकि दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य भक्ति मार्ग में ये जानते ही नहीं थे कि कृष्ण असली जो नामधारी है शरीर के द्वारा वो सतयुग से भी पहले कोई युग था, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पुरुषों में उत्तम बनता है। 500-700 करोड़ मनुष्य जो पुरुष रूप में हैं उनमें उत्तम पार्टधारी बनता है। कहाँ बनता है? संगम में या सतयुग में? संगम में बनता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये बात दुनिया के भक्ति मार्ग के कोई विद्वान पंडित आचार्य धर्म पिता ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं और अपने जिस बच्चे के द्वारा इस संसार में ज्ञान फैलाते हैं, जिसे कहा गया परम ब्रह्म माने प्रजापिता बाल वाला व्यक्तित्व, वो परम ब्रह्म भी अपना यही फर्ज समझता है कि जैसे मेरे बाप ने, उसका बाप कौन है, शिव, जैसे मेरे बाप ने मुझ बच्चे का नाम बाला किया ना इस सृष्टि में, ऐसे ही मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा बच्चा जो बनेगा इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता सतयुग का नारायण, उसको मैं सारी अथॉरिटी सौंप दूंगा। हर एक बाप वर्षे के रूप में यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा नाम वाला करे। कोई बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा नाम वाला न हो है? सभी बाप चाहते हैं। तो शिव बाप ने अपने बड़े बच्चे मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उसका नाम बाला किया, उसको सारी प्रॉपर्टी दी, जिस प्रॉपर्टी के आधार पर उसने योग की सिद्धि प्राप्त की, और योग की सिद्धि प्राप्त करके वो विश्व का बादशाह बन जाता है। जो गाया जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व का नाथ बनता है योग बल के आधार पर। बाकी बाहुबल के आधार पर दुनिया में कोई भी धर्म पिता या उसका फॉलोअर सारे विश्व पर कोई राजा ही नहीं कर सका। महत्वाकांक्षी तो बहुत हुए, हिटलर, नेपोलियन जैसे, लेकिन विश्व की बादशाही किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो हिंसक थे। हिंसा से कभी विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। ये तो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं राजयोग, जिस राजयोग के आधार पर अहिंसा के द्वारा कोई भी हिंसा किए बगैर विश्व की बादशाही प्राप्त की जा सकती है, और वो है राजयोग। वो राजयोग की प्राप्ति गीता ज्ञान के द्वारा होती है, और वो गीता ज्ञान दाता है गीतापति भगवान। तो बीज रूप में अगर गीता कहें, गीता माता, तो कौन है? बीज रूप आत्मा की स्थिति के रूप में, जैसे आत्मा बीज है इस शरीर रूपी वृक्ष का, ऐसे इस मनुष्य सृष्टि में वो बीज कौन है? जगदम्बा तो साकार है, परम ब्रह्म वो बीज है। माताओं का भी बीज है, क्योंकि उसका शरीर लिया है, तन लिया है भगवान बाप शिव ने। ईश्वर बाप तन लेते हैं कि आत्मा को कंट्रोल करते हैं? हम बच्चों की आत्मा को कंट्रोल किया है शिव बाप ने, या हम बच्चों को ये सिखाता है कि तुम अपनी शरीर की इंद्रियों को राजयोग के द्वारा कंट्रोल करो है? हम आत्माओं को पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा या परतंत्र बनाया? स्वतंत्र छोड़ा। चाहो तो ईश्वरी ज्ञान पर चलो, न चाहो तो न चलो, ऐसे ही है ना। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं प्रजापिता सहित, मनुष्य सृष्टि के बाप सहित सब पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र हैं, या भगवान बाप ने, ईश्वर बाप ने जो मत दी है उसमें बंधी हुई हैं अनिवार्य रूप से है? बंधी हुई हैं, कोई बंधी हुई नहीं। चाहे तो ईश्वरीय मत का फॉलो करें, न चाहे तो न करें, और करती भी है। जब चाहती है तो अपनी मन मत के आधार पर चलती है, या तो जिनको गुरु बनाया हुआ है उनकी परमत के आधार पर चलती है। बीच बीच में जितनी जिसमें शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अपनी मन बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर ही चलाती है, तो सब स्वतंत्र है। तो शिव बाप ने आत्मा को आधीन नहीं किया, किसको आधीन किया? तन को आधीन किया। इस दुनिया में जो भी बाप होते हैं वो परिवार में सृष्टि बनाने के लिए, अपनी पारिवारिक सृष्टि पैदा करने के लिए परिवार के भांति तैयार करते हैं, तो उसके लिए माता को आधीन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ये परंपरा सुप्रीम सोल बाप से शुरू हुई। सुप्रीम सोल बाप भी जब इस सृष्टि पर आता है तो इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य रूप में आत्माएं हैं 500-700 करोड़, उन सबका जो बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप बीज, गीता में बताया ना, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान, नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष। क्या क्या नाम दिया? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, था माने स्थिर रहने वाला। कैसा वृक्ष? जो मन रूपी घोड़ा जहां स्थिर किया गया, मन स्थिर रहने वाला है या लगातार चलायमान है? चलायमान। तो चलायमान मन जो है उसके द्वारा नई सृष्टि नहीं बन सकती। क्या नई दुनिया? स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। स्वर्ग की स्थापना तब ही हो सकती है जब स्व की स्थिति में स्थित हुआ जाए। स्व माने आत्मा। तो आत्मा में जो मन बुद्धि है उसमें जो मन है बहुत चलायमान, उस मन को आत्मिक बिंदु उसमें स्थिर कर देना। कहाँ स्थिर कर देना है? इंद्रियों में स्थिर कर देना या आत्मा में स्थिर कर देना? आत्मा में स्थिर कर देना, ऐसी प्रैक्टिस करना। तो जिसने ये प्रैक्टिस पक्की की 100%, उस बीज का नाम और उस बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है उसका नाम रखा गया अश्वत्थ वृक्ष, जिसका गीता में वर्णन है। तो ये मनुष्य शक्ति एक वृक्ष है, इसका एक बीज कौन सा है जिसमें से ये वृक्ष निकलता है, उस बीज का नाम मुरली में बता दिया। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, क्या मनुष्य सृष्टि में जो बाप है वो राम वाली आत्मा है क्या, और जो बच्चा है अव्वल नंबर का बच्चा, बच्चा बुद्धि, वो कौन है, कृष्ण वाली आत्मा। ये दो ही आत्माएं हैं जो भारतीय परंपरा में जिन बच्चों को भगवान का लकब मिल गया, कृष्ण भगवान कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, या राम और ज्ञान चंद्रमा जो कृष्ण है, वो दोनों जिस शरीर में इकट्ठे होते हैं उसका नाम, अरे चंद्रमा किसके शरीर पे दिखाया जाता है, शंकर, तो ये भी भगवान। लेकिन वास्तव में ये भगवान का टाइटल जो है इन आत्माओं को किसने दिया है, शिव बाप ने दिया, जो मनुष्य आत्माओं का बाप है वो टाइटल इसलिए देता है कि तुम आत्मा रूपी जो बच्चे हो मनुष्य सृष्टि में, वो बच्चे जो बहुत भाग्य का अर्जन करते हैं, सबसे जास्ती बड़े भाग्य का अर्जन करते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, उनका नाम पक्का कर दिया, उपाधि दे दी, क्या भगवान, बाप के रूप में राम भगवान और बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान, और संगम युग में दोनों का पार्ट इकट्ठा होकर के जिस पर्सनालिटी के द्वारा जिस शरीर के द्वारा ये पार्ट चलता है उसका नाम शंकर देवी। तो ये तीनों भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए संसार, और इनकी यादगार भी बनी हुई है। शंकर के लिए कौन सा स्थान माना जाता है भक्ति मार्ग में, शंकर को कौन सी नगरी प्यारी है, काशी नगरी, वो है शंकर का स्थान, और राम की कौन सी नगरी है, अयोध्या, जहां कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ इसलिए नाम दिया अयोध्या, और तीसरा स्थान कृष्ण का कौन सा है, मथुरा, क्या क्या किया, मथुरा नाम दिया। तो ये तीन ही स्थान है, तीन आत्माओं की प्रत्यक्षता के स्थान है, जैसा जैसा काम किया वैसी वैसी उनकी प्रत्यक्षता होती है, नाम पड़ता है। कृष्ण नाम कैसे पड़ा, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला, कृष माने खींचना, क्या कृष से बनती है कृषि, खेती, खेती कैसी होती है, है? अरे खेती करने वाला कौन, किसान बैलों के द्वारा खेती करता है, क्या खींचता है, बीज बोने के लिए हल खींचता है। तो कृष माने खींचना, इस मनुष्य शक्ति में कौन सी आत्मा है जो योग बल के आधार पर संपूर्ण स्टेज प्राप्त करती है आत्मा की और सारे संसार की मनुष्य आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती है। उसका नाम पड़ गया कृष्ण, जो सुप्रीम सोल बाप का बच्चा है। आजकल चित्रों में भी देखा होगा, चंद्रभाल जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसा बुढ़ा बूढ़ा पुराने से पुराना आदमी गोद में किसको लिए बैठा है? कृष्ण को लिए बैठा है। वो कोई शंकर की बात नहीं है, शिव आत्मा उसमें प्रवेश है, शिव बाबा है, उस शिव बाबा की गोद में वो कृष्ण बच्चा पल रहा है जो चित्रों में दिखाया जाता है। बाकी सत्युग में जो कृष्ण पैदा होगा उसको शिव बाबा गोद में लेगा क्या? है नहीं? तो ये संगम युगी कृष्ण की बात है कि संगम युग में जो देहधारी है, जिस देहधारी में सत्युग के कृष्ण वाली आत्मा भी प्रवेश होती है ज्ञान चंद्रमा के रूप में, जिस ज्ञान चंद्रमा से जो भी आत्मा रूपी सितारे हैं वो क्या अनुभव करते हैं है? शीतलता अनुभव करते हैं या गर्मी का अनुभव करते हैं? शीतलता अनुभव करते हैं। वो चंद्रमा जो एक यादगार रूप में बना हुआ है, जड़ चंद्रमा आसमान का, आसमान के सितारे यादगार हैं, वो चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करने वाला है। और जो चैतन्य चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा, दादा लेखराज ब्रह्मा उन्होंने दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं का मुख्य गुण क्या देखा जाता है? है जीवन में कौन सा गुण उनमें विद्यमान रहता है? सहनशीलता। जो सहनशीलता माता धारण करती है दुनिया में, वो सहनशीलता का गुण कोई पुरुष धारण ही नहीं कर सकता। अगर धारण कर सकता है तो देखने में नहीं आता। 9 महीने कौन पेट में पालता है पुरुष? कोई पालता है क्या? माता पालती है। बच्चों की पालना माता कर पाती है सहनशीलता पूर्वक, या बाप कर पाता है? है? माई कर पाती। तो दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में सबसे बड़ी माता संगम युग में कौन देखने में आई? प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा। लेकिन दादा लेखराज जो ब्रह्मा है वो अविनाशी माता है या विनाशी है? विनाशी की पूजा होती है, विनाशी के मंदिर बनते हैं यादगार, विनाशी की मूर्तियां बनती हैं या अविनाशी की बनती है? तो देखो संसार में कभी भी जो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य रूप में ब्रह्मा होता है उसकी मूर्तियां नहीं बनती, उसके मंदिर नहीं बनते, उसको कोई याद भी नहीं करता। तो वो मां माता कौन है जो संसार में गाई जाती है, खास करके भारतवर्ष में? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू माने एक, त्वम माने एक, संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। त्वम युवाम यूयम, त्वम माने तू एक, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो एक शिवलिंग, वो माता भी है और वो पिता भी है। आप कहेंगे ये तो भक्ति मार्ग में मान्यता है अज्ञानियों की, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। भले ज्ञान नहीं है तो भी भक्ति भावना के आधार पर आज भी उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि एक ही भगवान है जो हमारी माता भी है और हमारा अंतिम पिता भी है। अंतिम माता भी वही है, अंतिम पिता भी वही है, एक ही सत्य है। भाई माता तो स्त्री रूपिणी होती है, स्त्री चोला वाली, और पिता पुरुष चोला वाला होता है। तो शिवलिंग कैसे माता और पिता हो सकता है? जो भगवान बाप ने भी मुरली में बोला हुआ है, मेरे लिंग की ही पूजा होती है क्या? और देवताओं के अन्य इंद्रियों की ही पूजा होती है, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन मुरली में बोला गया कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है। अब बताओ, शिव को शरीर है? जब शरीर ही नहीं है तो इंद्रियां हैं? हैं? इंद्रियां भी नहीं है। जब इंद्रियां हैं ही नहीं तो उन इंद्रियों के बीच में जो सबसे शक्तिशाली, जीतने में अजेय मानी जाती है, वो कामेंद्रिय है शिव के अंदर, शिव आत्मा में है? नहीं। तो किसने कहा, कौन सी आत्मा ने बोला कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है? है? नहीं, शिव ने जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, परम ब्रह्म प्रजापिता, वो आत्मा बोलती है। जो बोला है कि ब्रह्मा इंटरफियर करके भी बोलता है। अरे बच्चों के बीच में जब बाप बोलता है परिवार के बीच में, तो माँ इंटरफियर करके नहीं बोल सकती? बोल सकती है, मुरली में भी बोला है, माता की भी बात माननी चाहिए। तो वो एक आत्मा कौन सी है जिसने बोला मेरे लिंग की ही पूजा होती है? कौन आत्मा है? वो ही परम ब्रह्म, वो ही प्रजापिता वाला व्यक्तित्व, जिसका नाम देते हैं शिव बाप ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में परम पहला पहला, वो कैसे है? स्त्री रूपणी कैसे है और पुरुष रूप आत्मा कैसे है? आज कलयुग के अंदर जो तामसी युग में तामसी चित्र बनाए गए हैं, मूर्ति बनाई गई है शिवलिंग की, उसको छोड़ दो, द्वापर के आज में जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था तो सात्विक मूर्ति बनी थी शिवलिंग की, कौन से मंदिर में है? सोमनाथ मंदिर में बनी थी। उस सोमनाथ मंदिर में गोलाकार शिवलिंग था पत्थर का, और उसके बीच में हीरा गड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है और वो पत्थर किसकी यादगार है? है जो हीरे के रूप में आत्मा दिखाई गई, आत्मा ज्योतिर्मय है, तो ज्योति के रूप में जो हीरा दिखाया गया वो किस आत्मा की यादगार है? है शिव बाप की यादगार अगर कहें। लेकिन शिव बाप तो ब्रह्मा के मुख से बोल गया, ब्रह्म वाक्य बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली असली, उसमें ही बोल दिया कि न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो शिवलिंग के अंदर जो हीरा है और जो गोल पत्थर है वो किसकी यादगार है? है अब तो आप बात बदल गए। ये बात साबित होती है कि जो पुरुषार्थ करते हैं देवता बनने का वो ही पूज्य बनते हैं, लेकिन देवता बनने का पुरुषार्थ उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान बाप कहते हैं मैं भगवान भगवती बनाता हूं। देवताओं से भी बड़ा कौन? भगवान और भगवती। लक्ष्मी नारायण को तो देवता देवी देवता ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण है ना, कलाओं में बंधे हुए देवताएं होते हैं कि कलाओं में भगवान बंधता है, देवताएं कलाओं में बनती। भगवान तो ऐसे है इस सृष्टि में जैसे इस सृष्टि में वो सूर्य, सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है या चंद्रमा कला में बंधा हुआ होता है। तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा वो ही कलाओं में बंधती है। तो इस मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं जो देवता बनती हैं वो भी कलाओं में बंधती है। भगवान कभी कलाओं में बंधा है मान लो, इसलिए बोलते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या वो कलाओं से अतीत है, परे है, उसको कलाओं में बांधा नहीं जा सकता किसको है? सत्युग में 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में बताया, त्रेता को 14 कला संपूर्ण, द्वापर को 8 कला संपूर्ण और कलयुग को कलाहीन बता दिया। तो सुप्रीम सोल बाप जो सभी निराकारी आत्माओं का बाप है वो चारों युगों में आता है तो कलाओं में बंधता है? उसके बंधने की तो बात ही नहीं। बंधायमान कौन होता है? है? नहीं, बंधायमान वो होता है जो अच्छे और बुरे कर्म करता है शरीर के द्वारा। शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं, वो जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले वो आत्मा अपने शरीर से संगम युग में अच्छे कर्म भी करती है और बुरे कर्म भी करती है। जब अच्छे कर्म करती है तो 16 कला संपूर्ण की ओर जाती है, और बुरे कर्म करती है तो कलाहीनता की तरफ जाती है। लेकिन उस आत्मा के लिए कोई ऐसा टाइम भी है कि वो शिव बाप समान बनती हो, जो शिव बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाता हूं। ऐसे ही चला जाता है या आप समान बना के जाता है? आप समान बना कर जाता है। तो बनेंगे नंबर वार कि एक साथ बन जाएंगे? तो जो अव्वल नंबर में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा बनती है वो है कौन सी आत्मा? शिव बाप। कैसी स्टेज धारण करती है? ऐसी स्टेज धारण करती है कि कलाओं से भी अतीत चली जाती है संगम युग में, कलाओं में भी बंधायमान नहीं रहती। जैसे शिव बाप कलाओं में बंधायमान नहीं है, वैसे वो आत्मा भी जो मनुष्य शक्ति का बीज रूप बाप है वो कलाओं से अतीत हो जाता है। जब स्वयं कलाओं से अतीत हो जाता है तो 16,000 गोप गोपिकाओं को कैसा पुरुषार्थ कराता है? क्या गायन है 16,000 गोप गोपिकाओं के लिए? है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल में भगवान बाप जो इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है शरीर के अंदर, उस शरीरधारी भगवान बाप ईश्वर के साथ जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं इंद्रियों के द्वारा, उनका नाम पड़ता है गोप और गोपी। वो 16,000 की संख्या है उनकी जो राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर राजयोग सीख करके। संगम युग में राजयोग सीखते हैं। सिखाता कौन है? है जो स्वयं योगी होगा वो सिखाएगा, या जो योगी है ही नहीं, भोगी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है, कौन? शिव बाप। वो तो अभोक्ता है। तो जो योगी भी है और फिर कलयुग के अंत में भोगी भी बनता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। योग बल धारण करने वाली आत्माओं का भी बाप है, योगीश्वर कहा जाता है, और भोगियों का भी बाप है। इसलिए मुरली में आया है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया भी उसकी है, उसका आधिपत्य है, वो हीरो पार्टधारी है। जन्म जन्मांतर उस नरक की दुनिया में भी अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है या नीच पार्ट बजाता है? अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, लेकिन उस हीरो पार्टधारी ने जो पार्ट बजाया उसको जीत ही नहीं सके। द्वापर की हिस्ट्री में आता है चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का गुरु है चाणक्य जीत ही नहीं सके। दो ढाई हजार वर्ष पहले की हिस्ट्री में ये बात आती है, हार खा के चले गए अलेक्जेंडर जैसे, ऐसे ही कलयुग में भी जिसको दुनिया वालों ने अकबर महान का टाइटल दिया, भारत का बड़ा सम्राट था, महाराणा प्रताप के सामने उसकी कैसी किरकिरी हो गई। महाराणा प्रताप जो छोटा राजा था उसको जीत सका या मात खाता रहा युद्ध में? अकबर की लाखों की तादाद की सेना और राणा प्रताप की हजारों तादाद की सेना, लाख भी नहीं, और जीत किसकी हो गई? जो झूठे थे, झूठे धर्म को फॉलो करने वाली सेना थी वो हार खा गई, और जो सच्चा था वो जीत पाया। ऐसे ही शिवाजी का भी नाम है, जीवन में हारता रहा या जीतता रहा, कभी हार नहीं खाई। ये वो ही हीरो पाटधारी आत्मा है जो द्वापर के आदमी वेद व्यास कही गई है। साहित्य के क्षेत्र में भी सबसे ऊंचा पाठ बजाने वाली, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आया है व्यास प्रसादात, ये गीता ज्ञान किसके प्रसाद से, किसकी प्रसन्नता से मिला है? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो मनुष्य रूप में जिस व्यक्तित्व ने गीता लिखी, सर्वोपरि ग्रंथ दुनिया का, जिस ग्रंथ का लोहा ज्ञान की गहराई दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं, कितना ज्ञान का गहरा ग्रंथ दुनिया में कोई भी हो ही नहीं सकता, जिसकी दुनिया की हर भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, ऐसा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, दुनिया का सबसे पुराने धर्म का ग्रंथ, उस पुराने धर्म का नाम ही है आदि सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। वो धर्म और वो धर्म जहां स्थापन होता है, वो धर्म खंड दोनों ही अविनाशी हैं, विनाश काल में भी उनका कभी विनाश होता ही नहीं। अमेरिका आज से 500 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं था कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप होता है, 500-600 साल के बीच में। आज से 300-350 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। कि दुनिया के जितने भी विदेशी विधर्मी धर्मखंड हैं, चाहे बौद्धी धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे मुस्लिम धर्मखंड अरब देश अफ्रीका और अफगानिस्तान वगैरह हो, पाकिस्तान, ये सब समुद्र के गर्त में समाये रहते हैं। उस समय इनके धर्म पिता भी सच्ची पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर सत्य ही सदैव रहता है। दुनिया में भी कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते। जो झूठा होता है वो भाग खड़ा होता है और सच्चा अडिग रहता है। तो हमारे भारतीय ग्रंथों में, शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है मनुष्य सृष्टि में, जिसका कभी विनाश नहीं होता। नाम क्या है? जिसके माँ बाप का नाम कोई नहीं जानता, जिसका कोई जन्म नहीं जानता, जिसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। तो जन्म मृत्यु से न्यारा है। कौन सा नाम? शंकर। वास्तव में शंकर शब्द जो है वो भी पुरुषार्थी व्यक्तित्व का नाम है, संपन्न का नाम नहीं है। शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है या शंकर की मूर्ति होती है, बाजू में देवताओं के मूर्तियों के साथ शंकर की मूर्ति भी रखी जाती है। तो शिवालय में मुखिया कौन हुआ? शिव मुखिया हुआ। इससे साबित होता है कि शिव अलग आत्मा और शंकर अलग आत्मा। शिव को पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, वो पुरुषार्थ ही नहीं है, वो तो पुरुषार्थ कराने वाली आत्मा है। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थी भी है। पहले पुरुषार्थ करने वाला है या नहीं है? पढ़ाई पढ़ने वाला है या नहीं है? स्टडी करने वाला स्टूडेंट है या नहीं है? उसके अंदर पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर कौन होता है? शिव। शिव है सुप्रीम टीचर, जो बोला भी है ब्रह्म वाक्य में, जिसे वेद वाक्य कहते हैं शास्त्रों में। क्या कहते हैं? एक ही है जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। माने एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक इंसान के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो क्या है? क्या है? बाप भी है ज्ञान का बीज बोने वाला, टीचर भी है उस ज्ञान के बीज को व्याख्या के साथ विस्तार देने वाला, गहराई से समझाने वाला, और वो ही व्यक्तित्व सदगुरु भी। गुरु साकार होता है या निराकार? साकार गुरु होता है। तो वो एक व्यक्तित्व कौन सा है? कौन सी आत्मा है जो एक व्यक्तित्व के रूप में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों पार्ट बजाती है? हैं? वो ही परम ब्रह्म, वो ही राम वाली आत्मा, वो ही शंकर जिसे कहो पुरुषार्थी रूप में, और वो ही शिव समान रूप धारण कर लेता है शिवलिंग का। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें जो हीरा है वो शिव की यादगार नहीं है। हीरा तो पत्थर होता है, शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? नहीं। जो नौ रतन गाए हुए हैं वो सब पत्थर बुद्धि बनते हैं। वो है जड़ रतन। और ये आत्मा रूपी नौ आत्माएं हैं चैतन्य आत्माएं, जो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाती है। नंबर वार रतन कहे जाते हैं, कोई हीरा, कोई मोती, कोई पन्ना, कोई माणक, लेकिन चैतन्य। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उसमें हीरा किसकी यादगार है? देह धारण करने वाली आत्मा की यादगार, या जो कभी देह धारण करने वाली आत्मा है ही नहीं, सदैव आत्मिक रूप में ही रहने वाला है शिव, उसकी यादगार। देह धारण करने वाली आत्मा याद का पुरुषार्थ करते करते शिव बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है, उसकी यादगार शिवलिंग में हीरे के रूप में पूजी गई थी सोमनाथ मंदिर में। और जो लिंग है वो है लाल लाल लिंग दिखाया जाता है, इसकी यादगार है, है? शरीर की यादगार है। लेकिन वो शरीर भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जो लिंग पूजा जाता है वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी लिंग है। वो जो लिंग है वो अविनाशी इसलिए है, वो लिंग में स्थिर रहने वाली वो लिंग रूप में स्थिर रहने वाली वो ज्योतिबिंदु हीरो आत्मा हीरा पार्टधारी जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है आत्मिक स्थिति में, निरंतर आत्मा के रूप में स्थिर हो जाती है ज्योति बिंदु रूप में, तो उसे हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति रहती नहीं। बाकी ये मतलब नहीं है कि उसको देह है ही नहीं, देह तो होती है, लेकिन देह की जो इंद्रियां हैं उनका भान नहीं रहता, देह की इंद्रियों का वो रस नहीं लेता, भले वो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है। स्त्री रूपिणी जो जगत माता है उस जगत माता का रूप दिखाया गया जलाधारी, जो ज्ञान जल को धारण करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जल को धारण करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन जाती है। वरो शंभु न तो रहो कुमारी, या तो मैं जो शंकर नामधारी आत्मा है उस आत्मा का जन्म जन्मांतर वरण करूंगी, नहीं तो कुआरा रहूंगी कुआरी रहूंगी, किसी दूसरी आत्मा के साथ उसका स्त्री रूप में पुरुष रूप में संसर्ग संपर्क नहीं होगा। ऐसी आत्मा उसमें क्या खासियत है? शास्त्रों में भी उसका नाम है उस खासियत के आधार पर, वो खासियत है उसने सत्य को धारण किया। क्या इस संसार में जो आत्मा सत्य है जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्या महाविनाश में भी उसका विनाश नहीं होता? वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाता है। चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ पदार्थ हो, सब विनाश काल में जड़ और चेतन सब उसके अंदर समा जाते हैं। जिसके अंदर समा जाते हैं वो है शिवलिंग। जो जड़त्व है, पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनका जो चैतन्य पुतला है पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो चैतन्य देवताएं थे या मुर्दा थे, चैतन्य थे। तो ये जो देवताएं ये रूप में भी जिनकी पूजा होती है वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे। उन जड़त्वमयी बुद्धि वालों ने बाप को नहीं जाना, इसलिए वो जड़त्वमयी बुद्धि वालों का जो संघात प्रकृति है, पांच तत्वों का संघात, वो प्रकृति के पांचों तत्व धरणी में समाये रहते हैं। जो धरणी माता कही जाती है, सीता माता कही जाती है। शिव बाप ने भी बोला है तुम सब सीताएं हो, क्या हो? सब सीताएं हो। सीताएं माने धरणी से पैदा होती है और धरणी में ही समा जाती है। तो सभी मनुष्य आत्माएं मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़कर इस धरणी से ही जन्म लेती है और धरणी में ही समा जाती है। कैसे, किस रूप में? जब वो धरणी माता साकार रूप धारण करती है जगदम्बा के रूप में, या जग जननी के रूप में जिसे कहते हैं लक्ष्मी या पार्वती। लक्ष्मी है महागौरी और जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। तो महागौरी और महाकाली, महागौरी है सतयुग के आदि में और महाकाली है कलयुग के अंत में। दो प्रकार की माताएं हैं उस परम पुरुष की, जो परम पुरुष इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में वो दोनों माताएं जगत माता और भारत माता, लक्ष्मी माता और महाकाली, काले मुंह वाले चंडिका देवी जिसे कहा जाता है, जिसकी पूजा चंडालों में ज्यादा होती है, ये दोनों प्रकार की माताएं संपन्न रूप जब धारण करती हैं योग बल से, तो महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है दीपावली पर। क्या? जैसे नारायण और कलातीत नारायण, सोलह कला संपूर्ण नारायण, सतयुग के आदि वाला, दोनों आत्माएं मिलकर एक बनती हैं स्वभाव संस्कार से, योग बल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, तो उनको कहा जाता है महानारायण। तो कैसे एक बनते हैं? नहीं, एक बनते हैं महामंत्र के आधार पर। क्या महामंत्र है? अरे है मन्मना भव, ये महामंत्र है गीता का। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। कहाँ समा जा? मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा ने कहा है? किसने कहा? परम ब्रह्म ने कहा, शिव ने नहीं कहा है? शिव ने नहीं कहा मन मना भव, अरे शिव को तो मन ही नहीं है चलायमान, उसका मन कभी चलायमान है या सदा अमन चैन में रहने वाला है? वो तो सदा शांति धाम का रहने वाला है, कभी अशांत होता ही नहीं, बेचैन होता ही नहीं। इसे पतित सृष्टि में आता है, पतित मनुष्य तन में आता है तो भी बेचैन होता है, कभी उसकी आत्मा तो कभी बेचैन होती नहीं। तो वो नहीं कहती आत्मा, क्या मनमना भव, कौन सी आत्मा कहती है? है, है? मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपन्न स्टेज धारण करता है तो वो ही कह सकता है। शिव समान स्टेज धारण करने के बाद मन मना भव, मेरे मन में समा जा, वो कहता है। जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए गए हैं उनमें झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है? है? शंकर बैठा हुआ दिखाया गया है। नंगा रूप है या कपड़े पहने है? नग्न रूप है। नग्न रूप का मतलब शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, नंगी आत्मा है। वो नंगी आत्मा जब संपन्न स्टेज धारण करती है आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु मात्र बन के रह जाती है, उस समय की बात है कि सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को वो आकर्षित करती है। तब उसका नाम पड़ता है संगम युगी कृष्ण। क्या? कौन सा कृष्ण? संगम युग का कृष्ण, जो सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं तो क्या प्राणी मात्र की आत्माएं आकर्षित तो होती हैं और उस ज्योति बिंदु में समा जाती है, जिस मंत्र का नाम है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जो कहता है मन मना भव, उसके मन में क्या है? किसको याद करता है? एक शिव बाप, दूसरा नकल, एक ज्योति बिंदु बाप को याद करता है। तो जो उसके मन में है दूसरी आत्माओं को भी खींच करके वो उसी स्टेज में ले जाता है। हम बच्चों को पहले खींचता है, क्या? इसलिए बोला हम अभी जो स्टडी करते हैं राजयोग की, वो स्टडी क्या बनने के लिए करते हैं? कैसा बनने के लिए स्टडी करते हैं? है? अरे लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनते हैं, पहले हम बाप के गोद के बच्चे बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? है? तो बाप के गोद के बच्चे बनने वालों में जो नंबर वार हैं, उनमें नंबर वन उसका नाम होता है श्री कृष्ण। जिस संगम की कृष्ण को भक्ति मार्ग में पूजा जाता है, क्या भक्ति मार्ग वाले सत्युग त्रेता की हिस्ट्री जानते हैं? जानते ही नहीं। सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। शास्त्रों में कहां की बातें बताई गई हैं? हैं? संगम युग में चारों युगों की जो रिहर्सल हुई है, शूटिंग हुई है, ड्रामा की रिहर्सल होती है ना? हैं? कोई ड्रामा खेलते हैं ना, तो उसकी पहले रिहर्सल करते हैं। है? तो संगम युग में जो सुप्रीम सोल बाप है वो पर्दे के पीछे डायरेक्टर बनकर के पार्ट बजाता है, किसी को देखने में नहीं आता। और हम बच्चे हैं पार्टधारी नंबर वन। उन पार्टधारियों में दो विशेष आत्माएं हैं पार्टधारी, राम और कृष्ण की आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो विश्व का पिता है। क्या है? विश्व पिता, जगत पिता, जगन्नाथ, देव के ढेर नाम दिए हुए हैं, सारे जगत को नाथने वाला। क्या भारत में जब पुरुषों की शादी होती है तो स्त्री को क्या डाल देते हैं? नथनी डाल देते हैं, नाथ लिया ना। इसलिए बोला तुम सब सजनिया हो, तुम सब सीताएं हो, राम है एक। क्या नाथने वाला? जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ एक है। और तुम सब सजनिया हो, तुम सब सीताएं हो। कैसी सीताएं? देवहन की मिट्टी से ही जन्म लेती है और देवहन में ही समा जाती है। उन माताओं में जो मुख्य माताएं दो हैं, जो शास्त्र में गाई हुई है कि एक कश्यप ऋषि थे ब्रह्मा के रूप में, जिन्होंने सृष्टि रची थी, उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति माने खंडित, पटी हुई, और अदिति माने अखंड। जो पवित्रता में अखंड थी, एक के सिवाय एक पति परमेश्वर जो माना जाता है भारतीय परंपरा में, उस एक कश्यप के सिवाय और किसी से खंडित नहीं हुई इंद्रियों के द्वारा। न व्यभिचारी आंख बनी, न व्यभिचारी कान बने, न व्यभिचारी कोई इंद्रिय बनी। सब प्रकार की इंद्रियों से सच्ची, सत्य को धारण करने वाली, उसका नाम शास्त्रों में दिया गया सती पार्वती। क्या? सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। कौन सी शक्ति के आधार पर? है पवित्रता। पवित्रता ही सत्य है, सच्ची चीज है। पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के सारे कार्य होते हैं, अच्छे से अच्छे कार्य और बुरे से बुरे कार्य भी पवित्रता की शक्ति से संपन्न होते हैं। जालंधर राक्षस था या देवता था? बुरा काम करने वाला था, दुखदाई था या सुखदाई था? दुखदाई था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। तुलसी ने वृंदा का जन्म लिया था। वो वृंदा इतनी पवित्र थी कि उसकी पवित्रता की शक्ति से जालंधर भगवान के पूरे परिवार में विजयी रहा। जो शंकर भगवान माना जाता है उसका पूरा परिवार लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो जीतता रहा, विजयी ही रहा। जब वृंदा का वो व्रत खंडित हो गया, पतिव्रता व्रत, तो जालंधर मारा गया। तो सत्य की इतनी शक्ति है, ज्ञान भी सत्य है। क्या? जो संगम युग में होता है भगवान से आता है। ज्ञान कहाँ से आता है? एक भगवान से ज्ञान आता है, ईश्वर से ज्ञान आता है, और साकार सृष्टि में पुरुषों के पास जो सत्य है उस सत्य को माताएं ही धारण करती हैं। अगर सच्चाई से धारण करें तो उनको सती कहा जाता है। सती साध्वी स्त्री, ऐसी शक्ति है सत्य की, वो सत्य है क्या चीज जो हर पुरुष मात्र में होती है, वो स्थूल चीज है, ज्ञान सूक्ष्म चीज है। पुरुष में सत्य होता है वीर्य, जिसे कहते हैं सत्व। मनुष्य जाति के अंदर जो सत्व नाम की चीज है, उस सत्व को मनुष्य जीवन भर धारण नहीं कर सकता। जैसे वो सत्य दुनिया का जो आखिरी सत्य है शिव, सदा सत्य, वो सदैव ज्ञान रूपी सत्य को अपने में धारण करके परमधाम में पड़ा रह सकता है? है पड़ा रह सकता है? नहीं पढ़ा रह सकता। उसको 5000 साल के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर माता में आना ही पड़ता है। जो माता उस सत्य ज्ञान की शक्ति को धारण करती है, ऐसे ही इस सृष्टि में हर पुरुष उस सत्य को धारण करता है, लेकिन अपने जीवन भर कोई पुरुष उस सत्य को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता, नहीं रहा। इसलिए तो पीछे वालों को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, आप खड़े होंगे तो। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि जो उस सत्य को धारण करने वाली माताएं हैं वो गुरु है संसार की, माता गुरु। उस धारणा शक्ति वाली माताओं को ही मैं स्वर्ग का गेट खोलने का अधिकार देता हूं। क्या स्वर्ग के गेट कौन खेलता है? माताएं कन्याएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती है। कन्याएं भी वो जिन्हें भगवान आकर के माता बनाता है, और माताएं भी वो जब भगवान आता है तो वो माताएं पवित्र बन जाती हैं कन्याओं की तरह। इसलिए बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। तो वो माताओं को अमृत कलश देता हूं। शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या, जब सागर मंथन हुआ तो ज्ञान का कलश किसको दिया? अमृत कलश लक्ष्मी माता को दिया। कहाँ की बात? इस संगम युग की बात है। ये ज्ञान कलश जब तैयार होता है अमृत कलश के रूप में, जो मुरली में बोला दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा, उस समय बोला जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे गीता ज्ञान को। क्यों? क्योंकि अमृत जो है सार को कहा जाता है। बिलोते हैं दूध को दही को तो सार निकलता है। ऐसे ही ये ज्ञान सागर का जो ब्रह्मा मुख से दिया हुआ ज्ञान है, इसका मनन चिंतन मंथन किया जाता है, मंथन किया जाता है बुद्धि से, तो ये अमृत बन जाता है। जो अमृत बनता है ज्ञान सागर के मंथन से, वो अमृत कलश माता को दिया जाता है। कौन सी माता का नाम है? है लक्ष्मी माता। वो लक्ष्मी माता जो ज्ञान अमृत कलश को धारण करती है, वो जिन जिन संपूर्ण ब्राह्मणों को बांटती है, वो ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जिनके पल्ले नहीं पड़ता वो दिति की संतान दैत्य बन जाते हैं, जिनको पल्ले पड़ जाता है, मिल जाता है अमृत कलश का अमृत, वो अदिति की संतान अद्वैत देवता कहे जाते हैं। जो दो को नहीं मानते, एक को ही मानते, उनको कहा जाता अद्वैत। वो अद्वैत देवता है, सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में होते हैं, जहाँ एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक ही मत होता है, दुनिया में एक ही भाषा होती है। अद्वैत होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। और द्वापर युग से क्या होता है? द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, वो दो दो धर्म चलाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो धर्मखंड हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस, सब कुछ बढ़ता ही चला जाता। तो जब अनेकता होगी तो झगड़ा बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ये जो मनुष्य रूप में देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, ये दुनिया में द्वैतवाद फैला करके दुनिया में झगड़ा बढ़ाते हैं। और जिसको देह है ही नहीं, कौन? शिव। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो राक्षसी धर्म नहीं बनाता है, दैवी धर्म बनाता है, देवताओं की दुनिया बनाता है। उन्हें कहते हैं देव। देव माने दूसरों को देने की इच्छा करने वाले, किसी से लेने की इच्छा नहीं करते। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, वो देवता हैं। भगवान आकर के मनुष्य को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। तो वो देने वाले बनते हैं, किसी से लेने की इच्छा नहीं करते, उनको कहा जाता है देव। वो दुनिया जो है वो है अद्वैत देवताओं की दुनिया, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल होता है। और द्वापर युग से दो दो धर्म, दो दो मतें, दो दो कुल, ये द्वैतवाद बढ़ता जाता है। उनको कहते हैं दैत्य। हर बात का खंडन करते हैं, एक का मत न मिले दूसरे से। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर होती है, अंत में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर के सारे संकल्प 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी एक से मिल जाएं। होती है? कोई नहीं होती। यहाँ तक कि घर घर में जो स्त्री पुरुष के रूप में रहते हैं, माता पिता के रूप में, वो माता पिता भी इस दुनिया के, कलयुगी दुनिया के अंत के सारे माता पिता आपस में झगड़ते हैं। मनसा के संकल्पों से भी झगड़ते हैं, दृष्टि से भी झगड़ते हैं, लाल पीली आंखें कर लेते हैं, वाचा से भी झगड़ते हैं, और कर्मेंद्रियों से भी मारामारी करते हैं। देखो कलयुग के अंत में आकर की ये दुनिया क्या बन जाती है, कौन बनाता है? ऐसी दुनिया किसने बनाई? निमित्त तो कौन बने है? यही द्वैतवादी धर्म पिता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। इब्राहिम आज से 2500 साल पहले आया, 2500 वर्ष के अंदर ये द्वैतवादी दुनिया बनती है। उससे पहले 2500 वर्ष अद्वैत देवताओं की दुनिया थी, राम कृष्ण की दुनिया थी। जो दुनिया उस बाप ने बनाई थी, जो निराकार आत्माओं का बाप है, वो देहधारी नहीं है। ये जो द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं, वो सब देहधारी, अपने को देह समझने वाले। ये आत्मा बनते ही नहीं, आत्मा नहीं बनते, इसलिए सत्युग त्रेता में इनका जन्म ही नहीं होता, देहभान में रहते हैं। इनके देहभान में भारतवासी कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों? भारत के ही लोग दूसरे धर्मों में क्यों कन्वर्ट हुए? इस्लामी आए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। बुद्ध आया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। मोहम्मद आया, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। सन्यासी शंकराचार्य आया, बड़े बड़े राजा सन्यासी बन गए। यथा राजा तथा उनकी प्रजा भी सन्यासी बन गई। गुरु नानक आए, सिख धर्म में चले गए। महर्षि दयानंद आए, आर्य समाजी बन गए। तो देखो, ये भारतवासी आत्माएं ही क्यों कन्वर्ट होती है? क्योंकि भारत है मातृ देश, माताओं का देश है। सुप्रीम सोल शिव जिनमें प्रवेश करता है, उनका नाम ब्रह्मा देता है। जो चार ब्रह्मा, पांच ब्रह्मा गाए हुए हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, वो ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं। उनसे जन्म लेने वाले जो भी ब्राह्मण हैं, वो नौकुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं शास्त्रों में। एक से एक ऊंची कुरी, एक से एक नीची कुरी। जो सर्वश्रेष्ठ कुरी है वो है सूर्यवंश, ज्ञान सूर्य की औलाद। ज्ञान सूर्य को ही फॉलो करते हैं, ज्ञान सूर्य से ही सुनते हैं। जो ब्रह्मा की मुख की वाणी में ये बात आई है कि एक से ज्ञान सुनेंगे, तो एक धर्म में रहेंगे जन्म जन्मांतर। अनेकों से ज्ञान सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक ऊंचते ऊंच को पहचानो। इस संगम युग में जब भगवान बाप आकर के नर को नारायण बनाता है गीता ज्ञान के द्वारा, उस समय उस एक बाप गीतापति भगवान को पहचानना चाहिए, साकार रूप में भी पहचानना चाहिए, उसमें निराकार आया हुआ है उसको भी पहचानना चाहिए, दोनों आत्माओं को पहचानना चाहिए। एक ही व्यक्तित्व में, एक ही पर्सनालिटी में, एक ही शख्सियत में जो पहचानेंगे वो उस बाप से वर्षा ले सकेंगे। कौन सा वर्षा? ज्ञान सूर्य बाप से ज्ञान सूर्यवंशी का वर्षा ले सकेंगे। जो ज्ञान सूर्यवंशी जन्म जन्मांतर जन्म तो लेंगे इस सृष्टि पर, चारों युगों में 84 के चक्र में तो आएंगे लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, जीवन रहते स्वधर्म निधनम से यह पर धर्म उभयाव। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे का धर्म बहुत भयभीत करने वाला है। जो दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स आए, उन्होंने भारतवासियों को कन्वर्ट किया, भारत की माताओं को, तो कन्वर्ट करके ले गए तो राजा रानी बना के रखेंगे या दास दासी बना के रखेंगे? दास दासी बना के रखा जन्म जन्मांतर। आधीन रहने का स्वभाव संस्कार डाल दिया अनेक जन्मों में, इसलिए गीता में ये वाक्य आया कि अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। स्वधर्म, स्व माने आत्मा, ज्योतिबिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा। इस ज्योतिबिंदु आत्मा में मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। किसी धर्म पिता को बाप नहीं मानना है, कोई हमारा बाप नहीं, सब दुखदाई है। एक ही बाप है इस मनुष्य सृष्टि में, जो इस सृष्टि पर आता है, जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, और जिसको आप समान बनाता है वो ही धर्म पिता कहा जाता है, सत्य सनातन धर्म का पिता, सनातन धर्म का पिता। उसका नाम पड़ता है सनत कुमार, ब्रह्मा का बड़ा पुत्र, पहला पुत्र, ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहा जाता है, ज्ञानियों का भी ईश्वर और योगियों का भी ईश्वर। उसी को शास्त्रों में नाम दे दिया है शंकर, उसी को शास्त्रों में नाम दे दिया है कृष्ण, लेकिन उन्होंने सतयुग का कृष्ण समझ लिया। जो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, द्वापर का वासुदेव समझ लिया, उसकी तो बात ही नहीं है। ये संगमयुगी कृष्ण की बात है, हम कहां के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? है? सतयुगी कृष्ण की पुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं या संगमयुगी कृष्ण की पुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? संगमयुग में जो कृष्ण बच्चा बनता है, बाप की गोद में खेलता है, ज्ञान रत्नों से खेलता है, हम उस कृष्ण की पुरी में वास करने वाले, स्टडी करने वाले, ग्राजियों की पढ़ाई पढ़ने वाले भांति हैं। दुनिया वाले उस बाप को पहचानते ही नहीं। जो बाप इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में पढ़ाई पढ़ाता है, बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, और सदगुरु के रूप में भी पार्ट बजाता है, साकार रूप में पार्ट बजाता है, उसमें वो साकार शरीर धारण करने वाली आत्मा भी है, और जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली सदाशिव की आत्मा वो भी उसमें प्रवेश करके पाठ बजाती है। इसलिए रामायण में कहा है सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हर हैं भव संभव केदा। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार, निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही शरीर में कार्य करते हैं, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही शख्सियत है, जिसमें साकार बनने वाली मनुष्य आत्मा और सदैव निराकार रहने वाला शिव ज्योति बिंदु पार्ट बजाता है। ओम शांति।